हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। अध्याय 18 श्लोक संख्या 18। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, ज्ञानं येयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं येयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं येयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। शब्दार्थ, ज्ञानं येयं परिज्ञाता। ज्ञानं यानी ज्ञान, नॉलेज। येयं यानी ज्ञान का लक्ष्य, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज या जानने योग्य। परिज्ञाता यानी जानने वाला या नोअर। त्रिविधा कर्म चोदना, त्रिविधा यानी तीन प्रकार के कर्म यानी कर्म की चोदना का मतलब होता है प्रेरणा देना या कर्म को मोटिवेशन जो करते हैं। ये तीन चीजें कौन सी? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। उसके बाद भगवान कहते हैं करणम कर्म करते थी। करणम यानी इंद्रिया, कर्म यानी कार्य जो वर्क, और कर्ता यानी डूअर। करते थी त्रिविध कर्म संग्रह इति यानी इस प्रकार त्रिविध यानी तीन प्रकार के कर्म संग्रह यानी कर्म को संग्रह करने वाले या कर्म को कार्य को करने वाले, करने का जो भी हम कार्य करते हैं तीन चीजों के कारण ही संभव होता है, कर्म इसी के द्वारा होता है। अनुवाद देखिए ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण यानी करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रेरणा कहा जाता है। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के आदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से इनमें मन सम्मिलित है, और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। मोकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। श्रीमद् भगवद् गीता के इस 18वें अध्याय के 18वें श्लोक को आज हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और एक ये मैजिक ऑफ द वर्सेस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता के विषय में यदि हम बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता के जो अध्याय हैं उनका जो नंबर है वही नंबर जब श्लोक का आता है, यानी 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 16.16, 15.15, 17.17, 18. Each of these verses are so significant. और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम जैसे हमको थोड़ा सा पता भी है 1.1 के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता बेस बनी हुई है इस पर, उसके बाद 2.2 कृष्ण का पहला श्लोक कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषम ही समुपस्थितम्। 3.3 लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन। यानी कि ये जो श्लोकास होते हैं जो चैप्टर के नाम के जैसे 7.6 मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, 10.10 ददामि बुद्धि योगम तम, 11.11 अनेक वक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम अनेक दिव्यानेकाद्यतयुधम, 15.15 सर्वस्य चाहम रिदि सन्निविष्टो। तो ये जो श्लोकास हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और ये जो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं 18.18 ये टोटल 18 श्लोक हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो 18 चैप्टर नंबर 18 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आगे के लगभग 22 श्लोक इसी श्लोक से रिलेटेड होंगे। मतलब ये बेस जो बेसिक श्लोक होते हैं ना ये, उसके बाद भगवान उसी के अनुसार बात कर रहे होते हैं। अभी ये 18वें अध्याय का दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं कि कर्म योगी का ज्ञान। वैसे तो हम जो कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन हमें मिलता है, और वही कार्य का जो रिएक्शन होता है वो हमारे बंधन का कारण बनता है, और इससे ये जन्म मरण का साइकिल बनता है। यानी अगर अच्छे कार्य किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कार्य किए होंगे तो उसका खराब कार्य मिलेगा, या फिर जैसे भगवान ने बताया अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मज फलम भवत्यतागिनां प्रीत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए होते हैं ये सारे कार्य। कौन से? अनिष्टम, मतलब जो नरक में ले जाने वाले हैं, जो नहीं अच्छे नहीं लगते, या इष्टम यानी जो स्वर्ग में लेके जाने वाले होते हैं, या मिश्रित होते हैं। तीन टाइप के कर्म फल मिलेंगे, या तो नरक ले जाएंगे, या स्वर्ग लेके जाएंगे, या मिश्रित होंगे पृथ्वी पर आएंगे। वो किसको मिलेंगे? जो त्यागी नहीं है, लेकिन जो सन्यासी है, भवित्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी है उनके लिए ऐसे फल या सुख दुख नहीं होते हैं। तो जो त्यागी होता है वो वास्तव में कर्म योगी होता है। या तो हम कर्म कांड कर रहे होते हैं, तो कर्म कांड क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, सकाम कार्य या फिर कर रहे होते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, या विकर्म कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। लेकिन अगर हमें कर्मों के बंधन से छूटना है तो उसके लिए हमें कर्म योगी बनना पड़ेगा। और कर्म योगी का ज्ञान कैसा होता है, वो किस भाव से कार्य करता है, तो भगवान ने जैसे श्लोक नंबर 17 में कल बताया, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। वो व्यक्ति जो ये अहंकार नहीं रखता है कि मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, जो अपने आप को कार्य का कर्ता नहीं मानता, और फिर बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं होती है, कि उसे अहंकार भी नहीं होता है और उसे उसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं होती है, लिप्त नहीं होती है, और इस तरह से यदि वो कार्य करता है, हत्वापि इमान लोकान, भले ही भौतिक जगत में उसके द्वारा मृत्यु भी होती है, ना हंति न निभत्यते, लेकिन ना ही वो उसको मारने वाला होता है और ना ही बांधने वाला होता है। तो आज भगवान हमें बता रहे हैं कि कर्मयोगी किस ज्ञान में रहकर कार्य करता है, वो ज्ञान क्या है। तो इसमें जो कर्मयोगी है वो ज्ञान के द्वारा ये समझता है कि कार्य करने के बहुत से कारण होते हैं, केवल मैं ही कार्य करता नहीं हूँ, और इस ज्ञान के कारण वो कर्म बंधन में नहीं बंधता। यानी कि उसे पता चलता है ना कि मेरी आत्मा भले ही बारंबार इस भौतिक जगत में कार्यों के कारण कारों में फंसने के कारण, वास्तव में कार्य जो होता है ना वो कभी बंधन का कारण नहीं बनता, लेकिन कार्य के अंदर जो अहम भाव होता है ना कि मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, तो वही अहम भाव जो है वो हमारे बंधन का कारण बनता है। तो इतना भगवान ने बताया कि कार्य के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बताया, भगवान ने कहा श्लोक नंबर 14 में, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं के कर्म का स्थान यानी यह शरीर कर्ता यानी कार्य करने वाला विभिन्न इंद्रियां सेंसेस अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण हैं। और आज भगवान इससे भी हायर पार्ट बता रहे हैं, इससे भी आगे की बात बता रहे हैं कि हम कोई भी कार्य किस प्रकार करते हैं। यानी कार्य जब भी कोई कार्य होता है किसी भी कार्य के दो भाग होते हैं। पहले तो हम कार्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मन में प्लानिंग होती है, उसके बाद हम वो कार्य जो होता है वो वर्क इज एक्सेस है ना। पहले बुद्धि के अंदर कोई प्लानिंग होती है और प्लानिंग उस योजना का भी कोई ज्ञान के कारण वो योजना बनती है, उसके बाद वो कार्य होता है। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं इसमें ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी वस्तु को देखते हैं, फिर वो वस्तु के विषय में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, फिर ही हम कोई एक्शन लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। या किसी वस्तु के विषय में सुनते हैं, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है और उसके बाद ही कोई निर्णय। या फिर जैसे अभी हमारे घर पे अगर बैल बजती है, हम दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, अब वो व्यक्ति जो है उसको जब हम देखते हैं तो हम उसके बाद निर्णय करते हैं कि इसको हमें घर पे लेके आना है, हमारा ये गेस्ट है, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, या फिर इधर से ही हम उसको जाने का बोलेंगे कि भाई नहीं है मम्मी घर पे, या फिर इस तरह से, या फिर उसको अवॉइड करेंगे। मतलब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसके बाद हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो जो पहली लाइन है, मतलब पहला विभाग है इस श्लोक का, उसमें भगवान ने कर्म चोदना का मतलब होता है मोटिवेशन ऑफ कर्म, यानी कर्म करने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है। अब विदाउट एनी ज्ञान जो है वो आप कोई भी कर्म करने का सोचते नहीं हो। जैसे आप ना अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको ये पता है कि इस बुक में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, नॉलेजेबल मिलेगा, इसलिए आप पढ़ रहे हो। आप घर पे कोई भी कार्य कर रहे हो, आप आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या कुछ सफाई कर रहे हो या फिर खाना बना रहे हो, कुछ ना कुछ आपके पास पहले उसके लिए ज्ञान है, उसके बाद आप कार्य करते हो। यानी वो ज्ञान आपको प्रेरित करता है वो कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान तीन चीजें बता रहे हैं जिसके कारण आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तीन चीजें कौन सी हैं? ज्ञानम येयम परिज्ञाता। ज्ञानम मतलब नॉलेज, आपको कोई कार्य के विषय में कुछ नॉलेज होती है, कुछ ज्ञान होता है, उसके बाद ही आप कार्य करते हो। और उस कार्य को करने के लिए गेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का लक्ष्य कि क्या किसके लिए ये कार्य किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और दूसरा तीसरा है परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब वो जो जान रहा है, जिसको ज्ञान है कि ये कार्य करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, यानी डूअर या नोअर। हाँ नोअर, जो परिज्ञाता जो जानता है। तो ये तीन जब मिलते हैं तो कर्म को प्रेरणा मिलती है। कौन से तीन? एक ज्ञान, एक ज्ञेय और एक परिज्ञाता। इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट है, जैसे आपको ज्ञान नहीं है तो कार्य के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी। आप अगर ज्ञाता नहीं है, जैसे नोअर नहीं है, किस कोई व्यक्ति नहीं है करने वाला, तो ज्ञान मतलब कर्म को प्रेरणा नहीं मिलेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको कर्म की प्रेरणा नहीं मिलेगी। उसी तरह से ये तीनों मिलते हैं तो कार्य मोटिवेट होता है, कार्य को प्रेरणा मिलती है। और आगे भगवान बता रहे हैं कि तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा कर्म होता है। अकेले आत्मा कार्य नहीं कर रही होती है, तीन चीजें मिलकर कार्य करती हैं। कौन कौन सी? करणम कर्म करते थी। करणम यानी हमारी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं वो कर्म यानी वो कार्य, जो पर्टिकुलर कार्य हम कर रहे होते हैं वो, और करते थे यानी डूअर कार्य करने वाला। तो ये तीन जब मिलते हैं, त्रिविध कर्म संग्रह, हम जो भी कार्य करते हैं इन तीन चीजों के कारण ही संभव है। इनमें से एक भी यदि एब्सेंस है, यानी कि अगर डूअर नहीं है, कर्ता, यानी वो हमारे पास इंद्रियां भी हैं, कार्य भी है, लेकिन अगर करने वाला भी सो रहा है तो कार्य नहीं होगा, है ना। कार्य नहीं हो सकता जब तक वो जाग के उस कार्य के लिए प्रेरणा, या फिर अगर मुझे कोई कोई चीज देखनी है लेकिन मेरे पास आंखें ही नहीं है तो कार्य नहीं होगा, है ना, देख नहीं सकूंगी। और कर्म यानी कि आपके पास इंद्रियां भी हैं और करने वाला भी हो लेकिन कोई कार्य नहीं है, कार्य की कोई प्रेरणा नहीं है, तो भी कार्य नहीं होगा। तो भगवान यहाँ कर्म संग्रह बताते हैं। कर्म संग्रह का मतलब होता है कि कार्य घटित होता है, जैसे संग्रह का वैसे मतलब होता है कि जमा करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि शास्त्रों का संग्रह करना या किसी वस्तु का संग्रह। तो इस तरह से कार्य को यदि करने में, कार्य को यदि संगठक करना है तो उसके लिए ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। तो जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में बताया कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। अभी कार्य करने से पहले उस कार्य के विषय में जो आपको प्रेरणा मिल रही है वही सूक्ष्म रूप से वास्तविकता बनता है, जिसके द्वारा, जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही कोई आता है व्यक्ति, दरवाजे से एंटर होता है और नीचे एक ना खड्डा बना होता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आएगा और खड्डे में गिरेगा, तो फौरन से आपने क्या किया, आपको ज्ञान था, ज्ञानम येयम परिज्ञाता, तो उस ज्ञान के द्वारा आपको तो वो ऑब्जेक्ट पता चल गया कि मैंने ये जान लिया है, और आपने फिर क्या किया, अपनी इंद्रियों के द्वारा, कर्णम कर्म च करते थी, इंद्रियों के द्वारा या तो आप शाउट करोगे, ए रुको गिर जाओगे इधर से नहीं आना, ठीक है, या तो आप अपनी जुबान को बोलोगे, जुबान से उसको बोलोगे कि रुक जाओ, या तो अपने हाथ से उसको पकड़ोगे, भले वो गिरने वाला होता है तो आपके पास समय नहीं होता है, आप उसको झपट के पकड़ लोगे कि इधर से गिरना नहीं, या फिर ऐसे हाथ रख के उसको रोक दोगे। तो कोई कर्णम कर्म च करते थी, एक तो कर्ण है हमारी इंद्रियां और वो कार्य है जिसके द्वारा हमने वो कार्य करके या बोल के या इशारा करके या कैसे करके उसको रोका है, या फिर और उसके साथ साथ कर्ता यानी मैं स्वयं हूँ, तो डूअर, तो ये सब जब मिलते हैं, एक तो ज्ञान होता है और उसके बाद ये और परिज्ञाता, ये तीनों मिलते हैं तो फिर प्रेरणा मिलती है, और जब कार्य कर्म और करना कर्ता ये तीनों मिलते हैं तो ही कर्म संगठित होता है। तो ये हो रहा होता है कंटिन्यूस, जैसे भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षण मत्पि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, कि एक क्षण के लिए भी हम अपने आप को कार्य करने से नहीं रोक सकते और हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन यदि हमें कर्म बंधन से छूटना है तो उसका क्या तरीका है कि हम सारे कार्य ये सोच कर करें कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसे तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 27 में 27 में बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि प्रकृतिर क्रियमाणानि, प्रकृति ही कारण है हर एक कार्य का, प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के जो तीन गुण है उसी के अनुसार सारे कार्य हो रहे होते हैं। और अगर जीव को ये पता चल जाए कि सारे कार्य प्रकृति के कारण हो रहे हैं तो उसको ज्ञान हो गया तो वो अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा, अहंकार भाव नहीं आएगा। लेकिन भगवान बताते हैं 3.27 में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो अहंकार के कारण ये सोचता है कि केवल मैं कर रहा हूँ इसीलिए वो बंध जाता है, कर्ता हम इति मन्यते, वो इस तरह मानता है कि मैंने किया है तो फिर वो उस कर्म के द्वारा बंध जाता है। तो दो लोग हों, दो व्यक्ति हों, भले ही एक जैसा कार्य करते हों लेकिन उसकी एक की कॉन्शियसनेस, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर वो कार्य कर रहा है, सेम कार्य है, और दूसरा व्यक्ति जो भौतिकतावादी है और भौतिक चेतना के द्वारा कार्य करता है, तो कार्य सेम दिख सकता है किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर होता है। क्योंकि जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर तो अहंकार होता है और वो अपने अंदर यही सोच रहा होता है कि इन कार्य को करने वाला मैं हूँ। वो ये नहीं जानता है कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, कैसे ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता मिलकर कर्म करता और करते थी, ये सब मिलकर कार्य करते हैं। वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य को होता हुआ नहीं देखता। भौतिकता वाली व्यक्ति कुछ जानता नहीं है कि अंततोगत्वा आखिर वह कृष्ण ही के अधीन है और भगवान के द्वारा ही सारे कार्य, मतलब मेरे शरीर को भी शक्ति भगवान के द्वारा मिली है, मेरे हृदय के अंदर आत्मा भी भगवान की है, मुझे ज्ञान भी कृष्ण के द्वारा मिला है, तो ये सब कुछ भगवान का है। जो कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है, जो कुछ होगा वो भगवान के द्वारा, भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता ना व्यक्ति, पहले जब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो अपराध करता है, फिर जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आकर जीव अपना सब कुछ भगवान को मानने लगता है तो उसके द्वारा अपराध नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता ही नहीं है। वो यही जानता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। फिर जो कार्य घटित हो रहा होता है वो कार्य उसके बंधन का कारण नहीं बन रहा होता है, क्योंकि उसने अपना आप जो है वो भगवान को सरेंडर कर दिया होता है। फिर वो भगवान के योजना के अनुसार कार्य करता है, कार्य की योजना नहीं बना रहा होता है, भगवान की योजना के द्वारा भगवान उससे, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उसे बुद्धि दूंगा। किसको बुद्धि दूंगा? तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान का भजन करेंगे प्रेम के साथ, जो अपने अंदर अहम भाव जिसके अंदर नहीं होगा, जो ये सोचेंगे कि मैं कृष्ण का हूँ और मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, फिर कार्य चाहे कोई भी हो, अर्जुन के द्वारा युद्ध होने वाला है, अर्जुन समस्त जीवों को, इतने 64 करोड़ जीवों को यहाँ पर मारने वाला है, लेकिन उसको हत्वा बिना निभा देते, भले वो मारेगा लेकिन फिर भी वो बंधन में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसके मन में ये नहीं है कि मारने के बाद मुझे राज्य प्राप्त होगा, उसके मन में ये भी नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, उसके मन में क्या है, केवल इतना है, करिष्ये वचनम तव, हे भगवान जैसा आप मुझे आदेश करोगे मैं वही करूंगा। तो कोई भी कार्य करने से पहले प्रेरणा मिलती है किससे? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात इसके विषय में बताई कि पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। अब सोचेगा बंदा, इच्छा करेगा, अगर वो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, अगर वो किसी शुद्ध गुरु के अंडर में रहकर नहीं कार्य कर रहा है तो क्या करेगा? तो वो मनमानी करेगा और जिसके कारण वो कर्म बंधन में फंसेगा। लेकिन यही ज्ञान ज्ञेय और प्रेरणा यदि शुद्ध भक्त के द्वारा मिलती है, जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, जिसे प्रेरणा कहते हैं, और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक से होती है। अब अर्जुन को प्रेरणा साक्षात भगवान दे रहे हैं और वही भगवान श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हमें प्रेरणा दे रहे हैं, गुरु साधु और शास्त्रों के द्वारा हमें प्रेरणा। तो यदि उनकी प्रेरणा के द्वारा हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्रों के आदेशानुसार यदि कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो फिर वो कार्य बंधन का कारण नहीं बनता है, बल्कि वही कार्य जो है वो हमारी मुक्ति का कारण बनता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम दूध की बनी हुई कोई बहुत ज्यादा वस्तुएं ग्रहण करते हैं तो फिर अपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, बदहजमी हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि वो दूध की बनी हुई एक दूसरी वस्तु, उसके विपरीत यानी दही, वो बोलता है दही को खाओगे या लस्सी बना के पियो तो तुम्हारा हाजमा अच्छा हो जाएगा। हालांकि दही भी दूध से ही बनी हुई है, लेकिन वो हमारी जो बदहजमी है उसको खत्म करेगी, है ना, डाइजेशन सिस्टम सही कर, वो ऐसा ही है। अब देखो जीव जो है वो जन्म जन्मांतर से कर्म में बंधा हुआ है और अब भी वो कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकता, कार्य उसे करने पड़ेंगे। जब तक जीव जी रहा है तो उसे कार्य तो करने पड़ेंगे, लेकिन कार्य उस ज्ञान के द्वारा यदि करता है कि ये कार्य केवल मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्मयोगी बन के यदि वो कार्य करता है तो वही कार्य, भले कार्य सेम होगा लेकिन फिर वही कार्य उसको बंधन से छुड़ा देगा। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में स्थिर हो जाते हैं, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, तब वो आध्यात्मिकता के कारण, उसकी शुद्धता के कारण वो कार्य भी शुद्ध हो जाता है। जैसे खाना खाना यदि, तो फिर उसमें अपराध हो सकता है। भगवान कहते हैं पुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, अपने लिए अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो बनाता है वो अपराध खाता है। लेकिन वही कार्य खाने का यदि हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो फिर उसके द्वारा क्या होता है, मुच्यन्ते सर्व किलबिषे, सारे किलबिष जो है, सारे अपराध जो है वो नष्ट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से हर कार्य को यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, ये तो भगवान की योजना से हो रहा है, ये तो भगवान के प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर ना उसका बंधन नहीं लगता। इसी बात को भगवान आगे के श्लोकों में बहुत ही सुंदर रीति से बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।